आधुनिकता अवधारणा एवं इतिहास। सामान्य प्रयोग में आधुनिक शब्द का अर्थ नवीन या अद्यतन से लिया जाता है। पुरातन से अलग दिखाई देने वाली नवीन वस्तुओं, स्थितियों, विचारों, संस्थाओं, जीवन शैलियों, अनुष्ठानों, तकनीकों, कला रूपों, जीवन व्यवहारों आदि को आधुनिक कहने का चलन आम है। इस धारणा में पुरातन और पारंपरिक से भिन्नता पर जोर दिया जाता है और अलगाव को रेखांकित किया जाता है। आधुनिक को देखने की इस दृष्टि से पारंपरिक और नवीन दोनों ही समाजों की सामूहिक भावना का स्वरूप प्रकट होता है। पारंपरिक समाज का कोई प्रतिनिधि जब इस अलगाव को रेखांकित करता है तो उसमें इस नवीन अर्थात आधुनिक के प्रति वितृष्णा, विरक्ति, घृणा या सम्मोहन के भाव हो सकते हैं। इसके विपरीत अपने को आधुनिक समाज के सदस्य के रूप में चिन्हित करने वाला व्यक्ति इस अलगाव को रेखांकन करते समय प्रायः एक श्रेष्ठता भाव से संचालित हो सकता है। हम देखते हैं कि अपने सामान्य अर्थ में भी आधुनिक का अर्थ बोध अनेक और विपरीत दिशाओं में जा सकता है। दरअसल आधुनिकता एक जटिल अवधारणा है। पिछले 150 से अधिक वर्षों से इसे समझने की कोशिश जारी है। परिणाम स्वरूप आधुनिकता की अनेक अवधारणाएं पैदा हुई हैं। ये अवधारणाएं परस्पर एक दूसरे से भिन्न ही नहीं विपरीत भी हैं। इनके बीच सघन वाद विवाद है। परिणाम स्वरूप आधुनिकता की समझ ने अनेक घरानों का रूप धर लिया है। हम यहाँ कुछ सामान्य धारणाओं का ही परिचय प्राप्त करेंगे। आधुनिकता वस्तुतः प्रवृत्ति बोधक पद है। 14वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य जन्मे और प्रभावी हुए दार्शनिकों, मतों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों की सामान्य उभयनिष्ठ वैचारिकता को आधुनिकता कहा जा सकता है। इसका प्रारंभ यूरोप के पुनर्जागरण से माना जाता है। आधुनिकता ने पुनर्जागरण और प्रबोधन के उत्तराधिकार को विरासत में ग्रहण किया है। यूरोप में 14वीं सदी के मध्य से 16वीं सदी के मध्य अनेक ऐसी हलचलें हुई जिन्होंने यूरोप वासियों के सोच विचार के ढांचे, जीवनचर्या और सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में अनेक बुनियादी बदलाव किए। इन बदलावों ने स्थिर और जड़ हो चुकी मध्यकालीन मानी जाने वाली व्यवस्था को झकझोर डाला। इन गतिविधियों और विचारों के संवेद बोध को ही पुनर्जागरण कहा जाता है। यह वस्तुतः मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच एक पुल है। इस युग में आए बदलावों में विचार और चिंतन के अनेक बीज अंतर्निहित थे जो आगे चलकर आधुनिकता के आधार बन गए। पुनर्जागरण वस्तुतः एक बृहद सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज की संस्थाओं, सार्वजनिक आचार प्रणाली और मनोभूमि को गहराई से प्रभावित करती है। पुनर्जागरण से यूरोप में प्रमुख रूप से निम्नांकित बदलाव हुए। पहला, मानव केंद्रित चेतना का उत्कर्ष। दूसरा, लौकिकता का महत्व। तीसरा, बुद्धि संगतता या विवेकशील चेतना का स्वीकार। चौथा, वैज्ञानिक चेतना का विकास। पांचवा, राज्य एवं धर्म के अलगाव पर जोर। छठवां, धर्म संगठनों की सीमाओं का निर्धारण या धर्म संगठनों के वर्चस्व का अस्वीकार। सातवां, व्यक्ति स्वातंत्र की भावना का उदय। आठवां, स्वतंत्र सामाजिक संस्थाओं का विकास। नौवां, राष्ट्रीय चेतना का उदय। दसवां, धर्म केंद्रित शिक्षा के स्थान पर स्वतंत्र एवं सर्वांगीण शिक्षा पद्धति का उदय। 11, सामंतवाद का क्षय। 12, कस्बों एवं नगरों का उदय। 13, मनुष्य केंद्रित साहित्यिक कला रूपों, राजनीतिक विचारों एवं दार्शनिक प्रणालियों का जन्म। 14, शास्त्रीय भाषाओं के स्थान पर देसी भाषाओं का उत्कर्ष। पुनर्जागरण युग में प्रारंभ उपयुक्त बदलावों ने यूरोप के सार्वजनिक एवं सामाजिक जीवन में आधुनिकता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कारण नहीं है कि इनमें से ज्यादातर पहलू आधुनिकता में स्वीकृत और विकसित हुए। यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण इटली में हुई। विशेष रूप से साहित्य में दांते, पेट्टॉर्क एवं बाकाशियो के कार्यों में उस चेतना के बीज बिंदु पहली बार दिखाई दिए जिन्हें पुनर्जागरण से जोड़ा जाता है। इन रचनाकारों ने जड़ मध्यकालीन धार्मिक विषय वस्तु से बाहर जाने, उस पर कटाक्ष करने, यहाँ तक कि उसके विद्रूप को प्रदर्शित करने का साहस दिखाया। इन्होंने मानवीय और लौकिक भावनाओं और अनुभूतियों का प्रकटन किया। इटालियन भाषा में रचना, क्लासिकल साहित्य का पुनरुद्धार एवं गद्य का विकास इनके महत्वपूर्ण अवदान थे। इंग्लैंड में जोर्फी चौसर, टॉम्स मूर, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर और फ्रांस में फ्रैंकोइस रबेला एवं मॉन्टेग आदि ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कला के क्षेत्र में इटली के लियोनार्डो द विंची, राफेल एवं माइकल एंजेलो ने पूर्ववर्ती कलाकारों सिमेलियो और जियोटो द्वारा शुरू की गई प्रवृत्तियों को ऊंचाई तक पहुंचाया। इन्होंने मानवीय जीवन की वास्तविक परिस्थितियों एवं अनुभूतियों के वास्तविक अंकन पर बल दिया। मनुष्य जीवन की ओर कला का यह रुझान उस युग में क्रांति से कम न था। यथार्थ चित्रण की अभावना यूरोप के अन्य देशों के कलाकारों में भी विकसित हुई। साहित्य और कला के क्षेत्र के साथ ही लौकिक जगत का अध्ययन करने वाली ज्ञान शाखाओं भूगोल, खगोल शास्त्र, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र, भौतिकी, रसायन और गणित में ऐसी अनेक खोजें हुई जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना, बुद्धिसंगत विवेकशीलता एवं तार्किकता को बढ़ावा दिया। विशेष रूप में खगोल विज्ञान में निकोलस कॉपरनिक, जॉन केपलर, गैलीलियो और गियोर्दानो ब्रूनो के खोजपूर्ण सिद्धांतों और विचारों तथा इनके लिए संघर्ष करने के उनके साहस ने धर्म संगठनों, धर्म ग्रंथों और धर्म गुरुओं के अतार्किक विचारों पर एक गंभीर सवालिया निशान लगा दिया। धर्मवृत्त ने उनके विचारों पर जो क्रूर, अमानवीय और हिंसक प्रतिक्रिया दी, उसने वैज्ञानिकता और बुद्धिसंगतता को प्रोत्साहित किया। इन खगोल शास्त्रियों ने ईसाई धर्मवृत्त में मान्यता प्राप्त इस विचार का खंडन किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य, तारे एवं ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी वृत्ताकार परिधि में उसके चारों ओर घूमती है। अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। अनेक धर्माधिकारियों ने बाइबिल की मान्यताओं के विपरीत होने के कारण कॉपरनिकस की आलोचना की। गैलीलियो और ब्रूनो ने इस मान्यता के लिए कठिन संघर्ष किया। ब्रूनो को चर्च द्वारा धर्मद्रोही घोषित कर जिंदा जलवा दिया गया। इन वैज्ञानिकों ने चर्च की धर्मसत्ता से संघर्ष किया और सत्य को जानने और उसे कहने के मनुष्य के मूलभूत अधिकार की प्रतिष्ठा की। वस्तुतः यह एक सिद्धांत विशेष का प्रश्न न था, यह आस्था और बुद्धि संगत तर्कशीलता के मध्य संघर्ष था जिसमें तात्कालिक रूप से पराजित दिखने के बावजूद अंततः वैज्ञानिक सत्य की विजय हुई। इस संघर्ष ने वैज्ञानिक चेतना और बुद्धि संगतता के विकास और धर्म सत्ता के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। वैज्ञानिक संघर्षों के समांतर यूरोप के विभिन्न देशों में धर्म संगठनों में सुधार के लिए आंदोलन हुए जिन्होंने धर्म सत्ता के प्रभाव और ताकत को कम किया तथा धर्म के जनतांत्रिकरण पर बल दिया। इन आंदोलनों का क्रांतिकारी महत्व इस बात में है कि उन्होंने यूरोप में उभरती हुई वैज्ञानिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और पूंजीवादी प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया तथा मनुष्य के सामाजिक जीवन में धर्म की भूमिका को सीमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी में मार्टिन लूथर ने की। मार्टिन लूथर ने धार्मिक जीवन में व्याप्त आडंबर, विलासिता, मिथ्याचारिता और धर्म लोलुपता की कठोर आलोचना की। उन्होंने सन 1517 ईस्वी में पोप के प्रतिनिधि द्वारा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में प्रवेश दिलाने वाले पत्रों की सार्वजनिक बिक्री का विरोध किया और 95 प्रतिस्थापनाएं कर प्रोटेस्टेंटवाद की नींव डाली। पोप द्वारा धर्म निष्कासन के आदेश की प्रतियां जलाकर उन्होंने जनता का भावनात्मक समर्थन प्राप्त किया। लंबे संघर्ष के बाद अंततः नवधनाढ्य मध्यम वर्ग और अनेक सामंतों के समर्थन के कारण जर्मनी ने लूथरवाद को मान्यता प्रदान कर दी। मार्टिन लूथर ने एक धर्म विचारक के रूप में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनका सार था कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए धर्म गुरुओं द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक कर्मों की कोई सार्थकता नहीं है। एक सच्चा ईसाई ईश्वर की कृपा और अपनी आस्था से बाइबिल की शिक्षाओं का अनुगमन करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह उन्होंने धार्मिक जीवन में धर्माधिकारियों और धर्म स्थल के महत्व को लगभग अस्वीकार कर दिया। धर्म सत्ता के प्रभावहीन होने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था। इंग्लैंड में राजा स्वयं धर्म सुधार का अगुवा बना। निजी कारणों से पोप से नाराज होकर तत्कालीन सम्राट हेनरी अष्टम संसद के सहयोग और समर्थन से इंग्लैंड के चर्च का प्रधान बन गए। उन्होंने इंग्लैंड के चर्चों को एंग्लिकन या राष्ट्रीय चर्च बना दिया जो पोप के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त थे। उन्होंने बाइबिल पर आस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया और धार्मिक मध्यस्थों को प्रभावहीन बना दिया। स्विट्जरलैंड में उलरिच ज्विगली और जॉन कॉल्विन द्वारा प्रस्तुत विचारों के कारण धर्म सुधार आंदोलन चला। जर्मनी और इंग्लैंड के आंदोलनों की ही तरह यहाँ भी बाइबिल पर जोर दिया गया और चर्च तथा पादरी वर्ग के अनुचित हस्तक्षेप तथा बाइबिल विरोधी कार्यों की निंदा की गई। तीन राष्ट्रों से शुरू हुए ये धर्म सुधार आंदोलन यूरोप के अनेक अनेक देशों में फैल गए और उन्होंने राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किया। इन गतिविधियों ने राज्य को ताकत प्रदान की तथा राजसत्ता धर्मसत्ता से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी। धर्म राष्ट्रीय वस्तु बन गया तथा राष्ट्रीय राजसत्ताएं धर्मसत्ता के अनुचित हस्तक्षेपों से मुक्त हो सकी। बाइबिल पर जोर दिए जाने से देसी भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद हुए तथा इन भाषाओं में साहित्य रचना को प्रोत्साहन मिला। मैक्स वेबर जैसे विचारक पूंजीवाद के विचार में धर्म सुधार आंदोलनों की सकारात्मक भूमिका मानते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन राष्ट्र केंद्रित थे। राष्ट्रीय राजसत्ता के प्रभावशील होने एवं चर्चों की भूमि एवं संपत्ति पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिए जाने के कारण अनुत्पादक परिपूंजी के उत्पादक प्रयोग के लिए द्वार खुल गए। इन आंदोलनों ने धर्मसत्ता के प्रभाव को सीमित कर दिया। परिणाम स्वरूप साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा आदि क्षेत्रों में धर्मसत्ता के अनुचित हस्तक्षेप और दबाव में कमी आई। इन क्षेत्रों में खुलापन आया, प्रयोगशीलता बढ़ी और स्वतंत्र विचारों के लिए जगह बन गई। उपयुक्त गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण के विचारों के एक विचारधारा के रूप में स्थापना हुई। मानववाद, उदारवाद और वैज्ञानिकता इसके केंद्र बिंदु थे। फ्रांसिस बेकन और दकार्टे इसके श्रेष्ठ प्रवक्ता थे। फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कार्य कारण संबंध को प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा जानने तथा दकार्टे ने ज्ञान के लिए आंखें मूंद कर विश्वास करने की बजाय संदेह करने पर जोर दिया। आधुनिकता के विकास में पुनर्जागरण के अतिरिक्त इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के स्वतंत्रता संग्रामों तथा औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम जानते हैं कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध के पश्चात यूरोप के साहसी नाविकों ने अपने साहसिक अभियानों द्वारा यूरोपवासियों के लिए अब तक न जाने अनेक महाद्वीपों, राष्ट्रों और समुद्री मार्गों का परिचय उनसे कराया। इस क्रम में अमेरिका महाद्वीप और भारत से यूरोप का परिचय हुआ और शीघ्र ही अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने इनसे व्यापारिक संबंध कायम किए। अमेरिकी महाद्वीप के ज्यादातर इलाके यूरोप के अलग अलग राष्ट्रों के उपनिवेश बन गए। भारत में अनेक राष्ट्र जोर आजमाइश करते रहे पर अंततः अंग्रेज इस प्रक्रिया में विजय हासिल कर सके। भारत का ज्यादातर हिस्सा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर लिया। अब तक एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के ज्यादातर इलाकों का राष्ट्रों के रूप में गठन नहीं हुआ था। इनकी विशाल प्राकृतिक संपदा का दोहन करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने इन्हें अपना उपनिवेश बना लिया। आज मौजूद राष्ट्र राज्यों में से अपवादों को छोड़कर शेष सभी कभी न कभी किसी न किसी ताकतवर यूरोपीय, अमेरिकी या एशियाई राष्ट्र के उपनिवेश रहे हैं। यह प्रक्रिया 20वीं सदी के मध्य तक चलती रही है। इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक स्वामी अपने उपनिवेश राष्ट्रों के भौतिक संपदा और मानव संसाधन का जमकर दोहन करते थे। खनिज और बहुमूल्य धातुएं प्राप्त करने की होड़ में युद्ध लड़ाइयां प्रायः आम थीं। औपनिवेशिक प्रभु उपनिवेश की राजनीतिक स्वतंत्रता को भी सीमित या पूरी तरह समाप्त कर देते थे। उसने उपनिवेशों को आर्थिक, राजनीतिक रूप से कमजोर किया। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक प्रभु राष्ट्रों में संपत्ति एकत्र हुई, जिसने आगे चलकर औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। यूरोप के अनेक राष्ट्र मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे तथा वहां पूंजीवाद ताकतवर हुआ। इससे इन राष्ट्रों में तेज परिवर्तन हुए, परंतु साथ ही सैन्यकरण बढ़ा और उपनिवेश हथियाने के लिए आपसी युद्ध बढ़े। कहना ना होगा कि औपनिवेशिक राष्ट्रों के शोषण तथा कथित ज्ञानवाद, पुनर्जागरण चेतना, ज्ञानोदय और इनके भीतर से अंकुरित होती हुई आधुनिकता के अमानवीय पक्षों का खुलासा किया। उपनिवेशवाद की प्रमुख शक्ति के रूप में इंग्लैंड के उदय ने वहाँ पूंजीवाद और लोकतंत्र की स्थापना में योग दिया। 17वीं और 18वीं सदी में राजतंत्री सत्ता और प्रभु वर्ग द्वारा नियंत्रित संसद के मध्य चले लंबे संघर्ष के बाद अंततः 1688 से 1689 ईस्वी में संसदीय प्रणाली की स्थापना हुई। सम्राट विलियम तृतीय और मैरी द्वारा बिल ऑफ राइट्स को मान्यता देने के साथ ही राजतंत्र की शक्तियाँ सीमित हो गयी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की संसद प्रमुख हो गई। अब इंग्लैंड के शासक संसद की सहमति से शासन करने और अपनी सीमित शक्तियों के कानूनी दायरे में कार्य करने के लिए बाध्य हो गए। इस बिल में नागरिकों के विशेष वर्ग के अधिकारों को मान्यता दी गई। इस तरह सीमित मायने में सही राजसत्ता प्रजातंत्र के अधीन हो गई। ब्रिटेन के इस आंतरिक संघर्ष ने विकसित होते अनेक राष्ट्रों को समय समय पर प्रजातंत्र के लिए प्रेरित किया। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रजातंत्र के लिए दूसरा महत्वपूर्ण संघर्ष स्वयं ब्रिटेन के एक उपनिवेश अमेरिका में हुआ। इंग्लैंड के प्रजातांत्रिक राजतंत्र की शोषण परस्त उपनिवेशवादी नीतियों के विरुद्ध अमेरिकी व्यापारियों, सेना नायकों और किसानों, शिल्पियों, श्रमिकों ने संघर्ष किया। इस संघर्ष ने जहां प्रजातंत्र की जनपक्षधरता और मानवीयता की सीमाओं को उजागर किया, वहीं राष्ट्र राज्यों के विकास को तीव्र किया। स्थानीय जरूरतों के मुताबिक प्रजातंत्र के प्रारूपों के विकास की दिशा में अमेरिकी क्रांति का विशेष महत्व है। हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड से प्रारंभ हुए प्रजातंत्र के प्रयोग 20वीं सदी के अंतिम दशक में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में सरकार स्थापित होने तक निरंतर चलते रहे। ये प्रयोग आज भी जारी है। प्रजातांत्रिक सरकारों और जनता के मध्य विकसित संवादी संबंध प्रजातंत्रों को जरूरतों के मुताबिक स्थानीय, देशज और जनपक्षधर बनाने में आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। अमेरिका की क्रांति वस्तुतः ब्रिटेन के निरंकुश राजतंत्र की मनमानी औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध थी। हम जानते हैं कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। इन उपनिवेशों में अधिकांश लोग ब्रिटिश मूल के थे। इसके अतिरिक्त डच, फ्रेंच, जर्मन, स्विस, स्कॉटिश, आयरिश एवं स्वीडिश मूल के लोग थे। ये नागरिक यूरोप में पुनर्जागरण के संघर्ष एवं इंग्लैंड के लोकतंत्र समर्थक क्रांति से परिचित थे। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत 1773 में हो गई थी। तब ज्यादातर नागरिक ब्रिटेन से स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं रखते थे। ऐतिहासिक परिस्थितियों का प्रवाह कुछ यूं रहा कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया। थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में तैयार इस घोषणा पत्र में आधुनिकता के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की उद्घोषणा थी। पहला, सभी व्यक्ति समान पैदा होते हैं, उनके कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनका अपहरण नहीं किया जा सकता। ये हैं जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज का अधिकार। दूसरा, मनुष्य के अनअपहरणीय अधिकारों की रक्षा ऐसी सरकारों द्वारा हो सकती है जो उनकी सहमति से चलाई जाए। यह प्रकारांतर से कुलीन तंत्र की सरकारों और राजतंत्र की तुलना में जनतांत्रिक सरकारों की महत्ता का प्रतिपादन था। इसमें जनता की प्रभुसत्ता की घोषणा अंतर्निहित है जो लोकतंत्र का प्राण तत्व है। तीसरा, जनता को जन विरुद्ध शासन को बदलने और उसके स्थान पर नया शासन स्थापित करने का अधिकार है। उपयुक्त घोषणा पत्र में एक अन्य पहलू 1786 में पारित वर्जीनिया के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम से जुड़ा है जिसे थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। इस बिल में स्पष्ट कहा गया था कि चौथा, सरकार को चर्च धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह प्रकारांतर से धर्म को विशुद्ध व्यक्तिगत चीज मानने के सिद्धांत का स्वीकार था। स्पष्ट था कि इसमें अंतर्निहित था कि राज्य को किसी धर्म विशेष की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इस विचार ने चर्च एवं राज्य के मध्य एक न्याय संगत विभेदीकरण का समर्थन किया। ब्रिटेन और अमेरिका के प्रजातंत्र समर्थक संघर्ष और मूल्यों के आगे बढ़ाने एवं स्थापित करने का श्रेय फ्रांस की क्रांति को जाता है। यह विश्व इतिहास की युगांतरकारी घटना है। इससे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की तीन आधुनिक आदर्शों की स्थापना की। प्रजातंत्र का संघर्ष ज्यादा ठोस रूप में सामने आया। इस क्रांति ने स्पष्ट किया कि राजनीति की आधार शक्ति जनता है। तीन स्पष्ट वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज में निचले स्तर पर मौजूद साधारण जनता ने ताकतवर दो ऊपरी वर्गों के हितों का संरक्षण करने वाली राजतंत्री सत्ता की निरंकुश नीतियों के विरुद्ध 17 जून 1789 को राष्ट्रीय महासभा के गठन की घोषणा कर एक तरह से प्रजातांत्रिक क्रांति की शुरुआत की थी। यह घोषणा वस्तुतः मध्यवर्गीय शिक्षितों, पेशेवरों और व्यापारियों के गठजोड़ का परिणाम थी जिन्हें मजदूरों, किसानों और शिल्पियों का समर्थन प्राप्त था। लंबे संघर्ष के दौरान प्रजातंत्र के अनेक प्रयोग हुए। अंततः 18 और 19 नवंबर 1799 नेपोलियन द्वारा सत्ता का अधिग्रहण किए जाने के साथ ही इनका अंत हुआ। नेपोलियन ने वंशानुगत राजवंश और नवविकसित बुजुर्वा प्रजातंत्र दोनों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार ऊपरी तौर पर फ्रांस की क्रांति का परिणाम बहुत आश्वस्तिदायक नहीं रहा, परंतु लगभग 10 वर्ष तक चले प्रजातांत्रिक प्रयोगों ने विश्व के सम्मुख एक नई व्यवस्था का खाका प्रस्तुत किया। इन प्रयोगों ने बुर्जुआ लोकतंत्र की शक्ति के साथ ही सीमाओं का स्पष्ट रूप से प्रकटन किया। स्पष्ट हुआ कि बुर्जुआ लोकतंत्र के सत्ता संघर्ष एवं असफलताएं किस तरह उग्र राष्ट्रवाद और सैनिक अधिनायकवाद का पथ प्रशस्त करती है। लगभग इसी तरह की परिस्थितियों में आगे चलकर 20वीं सदी में इटली में फाशीवाद और जर्मनी में नाजीवाद का जन्म हुआ। फ्रांस की क्रांति का महत्व निर्विवाद है। इस क्रांति ने अनेक आधुनिक मूल्यों और विचारों की स्थापना में योगदान किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र। सामंती राजतंत्र का पतन एवं लोकतंत्र का उदय एक महत्वपूर्ण परिघटना है। यह लोकतंत्र इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र से भिन्न, पूर्णतः जनता द्वारा संचालित था। इसमें विशेषाधिकार प्राप्त उच्च वर्ग और सामंती प्रभुत्ता का अंत हो गया तथा राजनीतिक सत्ता पूरी तरह जनता के प्रतिनिधियों अर्थात राष्ट्रीय महासभा के पास आ गई। राष्ट्रीय महासभा द्वारा जारी नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र स्पष्ट करता है कि सभी नागरिकों को विधि निर्माण और वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रण का अधिकार है। इस क्रांति ने राज्य एवं धर्म के पूर्णतः अलगाव पर मोहर लगाई। फ्रांस के राष्ट्रीय सम्मेलन ने इस अलगाव की घोषणा की और माना कि धर्म निजी आस्था का प्रश्न है, न तो राज्य को धर्म द्वारा नियंत्रित होना चाहिए और न ही धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। यह धार्मिक सहिष्णुता की जनतांत्रिक नीति की प्रारंभिक उद्घोषणा थी। आगे चलकर ज्यादातर आधुनिक प्रजातांत्रिक राष्ट्रों ने इस नीति को अनिवार्य माना। धर्माधिकारों को राज्य सत्ता और संविधान के प्रति जवाबदेह बनाया गया। इस क्रांति ने राज्य द्वारा नागरिक अधिकारों की स्वीकारोक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा द्वारा जारी मनुष्य एवं नागरिकों का अधिकारों की घोषणा ने मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता को अधिकार के रूप में वैधानिक मान्यता दी। इसके अनुसार सभी मनुष्य अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान रूप से जन्मे और रहे हैं। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति, सुरक्षा तथा अत्याचारों का विरोध, ये मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य के मूल्यवान अधिकारों में से एक है। फ्रांस की क्रांति ने लिखित संविधान के राज्य की स्थापना की। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ फ्रांस ने राजतंत्र या कुलीन तंत्र की मनमानी से चलाए जाने वाले राज्य के अधिकार पर निश्चित संविधान के राज्य की स्थापना की। नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में स्पष्ट किया गया कि कानून जनिच्छा की अभिव्यक्ति है और सभी नागरिकों की विधि निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। 10 वर्ष चले प्रजातांत्रिक प्रयोगों में नई प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा उभर कर आया है। इसमें राज्य प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। ये हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके कार्यों एवं शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना की स्थापना की, समानता पर जोर दिया एवं मताधिकार की स्थापना की। फ्रांस की क्रांति ने 18वीं सदी के महान विचारकों मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और विशेष रूप से रूसो के विचारों की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया। आधुनिकता में एक विशेष प्रवृत्ति राजसत्ता और धर्मसत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहित करने और उनके विचारों पर ध्यान देने को रही है। ये विचारक जन समाज में वैचारिकता की स्थापना करते हैं तथा लोकसत्ता के प्रतिनिधि होते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक दी स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रजातांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया तथा प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए उसे विधायी, कार्यकारी और न्यायिक 3 भागों में बांटने का सुझाव दिया। वे प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता के राजनीतिक गुणों को अनिवार्य मानते थे, अन्यथा उसके भीड़तंत्र में बदलने की आशंका रहती है। वोल्टेयर बुद्धि एवं विचार की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे निरंकुश राजसत्ता और धर्मसत्ता के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने धर्म और धर्म समाज के अंतर विरोधों का प्रखर प्रतिवाद किया। जॉन जैक रूसो ने मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर से एक कदम आगे बढ़कर संपूर्ण सामाजिक पुनर्गठन का प्रस्ताव किया। अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध में उन्होंने प्रजातंत्र की अवधारणा को आगे बढ़ाया तथा जनता की प्रभुसत्ता और समान नागरिक अधिकारों को इसके आधार की तरह प्रस्तुत किया। वे मानते थे कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, अब सब तरह से बंधनों में बंधा हुआ है। रूसोक ने राजसत्ता को सामाजिक अनुबंध पर आश्रित बताया। यह क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति समाज के अन्य सभी सदस्यों की सहमति से किसी केंद्रीय सत्ता के प्रति अपने अधिकारों का समर्पण करता है। यदि कोई शासक जनता द्वारा प्रदत्त प्रभुसत्ता को अस्वीकृत करता है तो इस सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में जनता को यह अधिकार है कि वह ऐसे शासक के साथ अपने सामाजिक अनुबंध को खत्म कर ले, अर्थात शासक को सत्ता से हटा दे। रूसो का यह विचार प्रजातंत्र को मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार और सामाजिक जवाबदेही के रूप में देखता है। इन विचारों ने दुनिया भर में प्रजातंत्र समर्थक जन आंदोलन को प्रेरणा दी और सामंती राजतंत्र के पतन में अपनी प्रखर भूमिका निभाई। आधुनिकता के विकास में फ्रांस की क्रांति के अतिरिक्त जिस दूसरी घटना ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति वह घटना है जिसने आधुनिक बोध और मूल्यों से संचालित आधुनिक समाज की रचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मशीनों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही हस्तचालित उपकरणों का स्थान लेना शुरू कर दिया, जिससे उद्योगों की बुनियादी रचना और उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। लुई एस सीडन ने उचित ही लिखा है कि औद्योगिक क्रांति मुख्यतः आर्थिक विकास की कहानी थी, जिसके द्वारा पश्चिमी समाज निम्न जीवन निर्वाह स्तर से एक महत्वपूर्ण उच्च स्तर तक बहुत कम समय में पहुंच गया, जिसके परिणाम आश्चर्यजनक हुए। उत्पादन की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई, पूंजी की शक्ति संपन्नता बहुत बढ़ गई, दूर के क्षेत्रों तक बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में सामान का यातायात संभव हो सका। मध्यम वर्ग ने सामाजिक आर्थिक शक्ति अर्जित कर ली। यह सब जो भी विकास हुआ, इसके प्रभाव से बहुत से महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जिन्हें सम्मिलित रूप से औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। औद्योगिक क्रांति ने धर्म सत्ताधीशों, राज परिवारों, सामंतों, सामंती कुलीनों के सम्मुख एक नई ताकतवर वर्ग को जन्म दिया, पूंजीपति वर्ग। इस वर्ग ने वैज्ञानिक प्रयोगों और नई मशीनों के विकास को प्रोत्साहित किया तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का विरोध करने वाली पुरातन सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का प्रतिवाद करने वाले वातावरण की रचना में खुलकर भाग लिया। इस प्रक्रिया ने मध्यकालीन और आधुनिक शक्तियों के मध्य संघर्ष को तीखा बनाया, जिसमें अंततः मध्यकालीन सामाजिक शक्तियों का प्रभाव क्षीण हुआ। इस संघर्ष ने आधुनिक विचारों के विकास में महती योगदान दिया। इससे सामाजिक जीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। औद्योगिक क्रांति की ऐतिहासिक परिस्थितियों ने ऐसे सामाजिक राजनीतिक समूहों का विकास किया, जो अपने समाजों में राजनीतिक सामाजिक लोकतंत्र लाने में सहायक हुए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, लोकतांत्रिक राजसत्ता मनुष्य के मूलभूत अधिकार माने जाने लगे। मशीन तंत्र द्वारा उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के निपटारे के लिए सामाजिक अधिनियमों की आवश्यकता पड़ी। मजदूर वर्ग एक ताकतवर नागरिक समूह के रूप में उभरा, जिसने अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी। इससे वर्ग संघर्ष तीव्र हुआ तथा नई क्रांतिकारी विचारधाराओं और दर्शनों का जन्म हुआ। मजदूरों की गतिविधियों से पूंजीवाद के समंजन के क्रम में नई संस्थाओं यथा ट्रेड यूनियनों और सहकारी समितियों आदि का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर उत्पादन बढ़ा, वहीं दूसरी ओर कच्चे माल उत्पादन को खपाने के लिए ग्राहक वर्ग की खोज ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के स्थान पर उग्र राष्ट्रवाद बढ़ा। उग्र राष्ट्रवाद एवं उपनिवेशवाद ने औद्योगिकरण से बाहर रह गए राष्ट्रों के भयानक औपनिवेशिक शोषण को प्रोत्साहित किया। औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक शक्ति बने यूरोपीय एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य अत्यधिक लाभ कमाने की होड़ ने औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धाएं बढ़ाई, जिसके फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इन साम्राज्यवादी कारनामों ने सैन्यकरण, आपसी युद्धों, भयानक हथियारों की खोज और उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जिसकी चरम परिणति प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध तथा नाजीवाद फासीवाद के रूप में सामने आई। औद्योगिकरण ने नई औद्योगिक मशीनों, यातायात मशीनों, संचार मशीनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों के विकास के कारण मजदूर एवं मध्यम वर्ग का विकास हुआ। नगरीकरण बढ़ा और सामंतवादी उत्पादन प्रणाली का क्षय हुआ। एक नए तरह के पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। पूर्व में व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के कारण विकसित व्यापारी पूंजीवाद की तुलना में इससे ज्यादा गहरा सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव डाला। औद्योगिक पूंजीवाद ने एक ओर उपनिवेशवादी प्रक्रिया को तीव्र किया तो दूसरी ओर राष्ट्रों के गठन और लोकतंत्र की मांग करने वाले सामाजिक राजनीतिक विचारों और समूहों को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का पूंजीवादी प्रारूप विकसित हुआ, जिसने पूंजीवादी हितों के संरक्षण एवं विकास में अपनी भूमिका निभाई। औद्योगिक क्रांति ने समाज एवं अर्थतंत्र में एक नए तरह का वर्ग भेद पैदा किया। पूंजीपति और मजदूर दो भिन्न वर्ग औद्योगिक पूंजीवाद के भीतर से उभरे। इन दोनों के मध्य एक नए वर्ग का विकास हुआ, जिसने दुनिया के आगामी बदलावों को गहराई से प्रभावित किया। यथा मध्यम वर्ग औद्योगिकरण एवं औद्योगिक पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप यूरोप अनेक राष्ट्रों में सामंती राजतंत्र एवं कुलीन तंत्रों के नियंत्रण में चल रही सरकारों के स्थान पर मध्यम वर्ग एवं औद्योगिक बुजुर्गवा वर्ग की सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाओं और हितों का पोषण करने वाली लोकतंत्रात्मक सरकारों का गठन हुआ। इस संघर्ष में औद्योगिक मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि प्रजातंत्रों की स्थापना के पश्चात मध्यम वर्ग एवं औद्योगिक बुजुर्गवा वर्ग ने लोकतांत्रिक सत्ताओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मध्यम वर्ग मजदूर वर्ग को प्रायः से बाहर रखा गया। इससे विशाल श्रमिक वर्ग के हितों की अनदेखी हुई। पूंजीवादी लोकतंत्रों में सरकारों, पूंजीपति वर्ग एवं मध्य वर्ग ने एक नई व्यवस्था के हितों का संरक्षण करने वाली आर्थिक विचारधाराओं का समर्थन किया। उदाहरण के तौर पर एडम स्मिथ का आर्थिक उदारतावाद। एडम स्मिथ औद्योगिक विकास और औद्योगिकरण को उन्मुक्त और हस्तक्षेपहीन रखने के समर्थक थे। उनके अनुसार आर्थिक गतिविधियों को स्वाभाविक तरीके से चलने देने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए और उन पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाने जाने चाहिए। एक नए विचारक अर्थतंत्र के किसी किसी तरह के नियंत्रण और नियमन के विरोधी थे। ये विचार लोकतंत्रों में पूंजीपतियों को सर्वोच्च जगह देते थे। ये मजदूरों को अपनी निम्न स्थिति के लिए स्वयं जवाबदेह मानते थे। परिणाम स्वरूप श्रमिकों को इस विचारधारा एवं सत्ता तंत्र से संघर्ष करने की आवश्यकता प्रस्तुत हुई। इससे पूंजीवादी प्रजातंत्रों के भीतर श्रमिक संगठन की नींव पड़ी और श्रमिकों के राजनीतिक आर्थिक आंदोलन खड़े हुए। समय समय पर श्रमिकों के हितों की आंशिक पूर्ति सुधारों द्वारा हुई। कारखानों की कार्य परिस्थितियों की अनुकूलता, काम के घंटों, सुरक्षा तंत्र, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, समान मजदूरी, पेंशन, सुविधापूर्ण आवासन, चिकित्सीय सहायता आदि के बुनियादी अधिकारों के लिए लंबे समय तक मजदूर आंदोलन हुए। मजदूर संगठनों को विधिक मान्यता मिली, मजदूरों से संबंधित कानून बने और वे राष्ट्रीय विधि संहिता का मुख्य हिस्सा बने। इस प्रक्रिया ने यद्यपि लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी ताकत बढ़ी, परंतु एक नए तरह की व्यवस्था की इच्छा भी जागृत हुई जो उनके हितों को मुख्य माने। इस क्रम में समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। विशेष रूप से कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों ने समाजवादी आंदोलनों को गहराई से प्रभावित एवं प्रेरित किया। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को अनिवार्य ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने दुनिया में ज्यादा मानवीय एवं वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष को अनिवार्य बताया। वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप स्थापित सर्वहारा के अधिनायकत्व की शासन व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने पूंजीवाद का गंभीर विश्लेषण कर उसके भीतर अंतर्निहित शोषण का खुलासा किया। पूंजीवाद की आलोचना से एक नई तरह की विचारधारा तथा समाजवादी समाज व्यवस्था का स्वप्न पैदा हुआ। पूंजीवाद को अब तक की सामाजिक अवस्थाओं में सबसे ज्यादा विकसित मानवीय एवं लोकतंत्रात्मक मानने वाले विचारकों के सम्मुख खड़े होकर मार्क्स ने इसके शोषण रूप का खुलासा किया तथा पूंजीवादी शोषण से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था के रूप में समाजवाद की परिकल्पना प्रस्तुत की। कार्ल मार्क्स की विचारधारा का समय के साथ विकास होता रहा, जिससे मार्क्सवाद एक निरंतर विकसित होती हुई गतिशील विचारधारा के रूप में सामने आया। फ्रेडरिक एंगेल्स, जॉर्जी प्लेखानोव, व्लादिमीर इलीच उल्यानोव लेलिन, लियो टॉस्की, रोजा लक्समबर्ग, स्टालिन, माओ त्से-तुंग, हो ची मिन्ह, फिदेल कास्त्रो आदि ने निरंतर इसकी नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। आधुनिकता का विकास एक दीर्घ कालावधि से संबद्ध है। इतिहास के ये संघर्ष आधुनिकता की अवधारणा को विकसित, सीमित और नियंत्रित करते हैं। इसी कारण उसे अनेक रूपों में समझा गया है। यूरोपीय आधुनिकता, अमेरिकी आधुनिकता, औपनिवेशिक आधुनिकता के समानांतर देशज आधुनिकताओं की संकल्पना ने इसे एक जटिल अवधारणा बना दिया है। पूंजीवादी आधुनिकता, समाजवादी आधुनिकता और पुनरुत्थानवादी आधुनिकता का ये विभाजन भी सहज संभव है। इस जटिलता, समानता और वैपरीत्य के बावजूद कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जिनसे आधुनिकता की पहचान की जा सकती है। ये हैं ज्ञान की शक्ति, बुद्धि संगतता, तार्किकता, वैज्ञानिक चेतना, मनुष्य की केंद्रीयता, लौकिकता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, राष्ट्रराज, लोकतंत्र, धार्मिक सहिष्णुता, राज्य की धर्मनिरपेक्षता, संविधान का राज्य, इतिहास, समाजशास्त्र, तकनीकी का संजाल और व्यक्ति सत्ता। समाज में जनतांत्रिकता के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक अवस्थाओं और समाजों में इनमें से कुछ का उपयोग कर शेष का निषेध करने वाली प्रति आधुनिकताएं भी विकसित हुई हैं। पुनरुत्थानवादी, फासीवादी और नाजीवादी व्यवस्थाओं और विचारों को इसके उदाहरण की तरह देखा जा सकता है। प्रायः इसी अर्थ में यह कहा जा सकता है कि विश्व के ज्यादातर समाजों में अभी भी आधुनिकता की परियोजनाएं अधूरी हैं, जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है। आधुनिकता, इस पद का कोई सुनिश्चित परिभाषिक अर्थ करना कठिन है। लगभग 700 वर्ष की निरंतर गतिविधियों के कारण जिस संश्लिष्ट एवं जटिल मानवीय चेतना का विकास हुआ है, उसे एक रेखीय ढंग से सुनिश्चित एवं परिभाषित कर पाना आसान नहीं है। संभवतः इसलिए विचारकों में इसकी अवधारणा को लेकर मतैक्य नहीं है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एडोना, हॉर्खिमार, फ्रांसुआ लियोटार्ड, फ्रेडरिक जेमसन, मिशेल फूको, जॉक डेरिडा, एंथोनी गिडेंस, यूर्गेन हैब्रमास, लुई अल्थयूसर, जॉर्ज डिटिजर और जया बैटेलॉर्ड आदि विद्वानों के विश्लेषण से आधुनिकता की गंभीर समालोचना प्रस्तुत हुई है। इस आलोचना में आधुनिकता के शास्त्रीय समक्ष को प्रश्नांकित भी किया गया है और नए ढंग से नई शब्दावली में उसे समझने की कोशिश भी की गई है। आधुनिकता को प्रायः प्रबोधन या ज्ञानोदय से जोड़कर देखा जाता है। आधुनिकता के संबंध में समानता जो समझ प्रचलित है उसका केंद्र बिंदु ज्ञानोदय युग में विकसित विचार है। आशय यह है कि पुनर्जागरण युग में जिस वैचारिकता के बीज रूप हमारे सामने आए हैं और जिनका एक हद तक सार्वजनिक प्रदर्शन ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की लोकतंत्र समर्थक गतिविधियों में हुआ, औद्योगिक क्रांति के पश्चात निर्मित समाज द्वारा प्रायः जिनकी स्थापना हुई, उन विचारों का समुच्चय ही आधुनिकता है जो बुनियादी तौर पर प्रबोधन या ज्ञानोदय से संबद्ध है। आधुनिकता की समझ को आधुनिकता के ज्ञानोदय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इशॉक, न्यूटन, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, इमैनुअल कांट, थॉमस जेफरसन, मेरी वोल्टक्राफ्ट आदि विचारक ज्ञानोदय के प्रणेता थे। ज्ञानोदय का केंद्रीय दर्शन तर्क था। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, ज्ञान के प्राय सभी क्षेत्रों में इसने समाज को देखने का तरीका बदला। सत्य की खोज के लिए तर्क की अनिवार्यता तथा व्यक्ति निष्ठता के स्थान पर वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया गया। संदेह एवं प्रश्नांक को ज्ञान प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा माना गया। यह विज्ञान के विकास के स्वाभाविक परिणाम थे। इन्होंने अब तक स्वयं सिद्ध माने गए प्रायः सभी स्रोतों से प्राप्त ज्ञान के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया। ज्ञानोदय को आधुनिकता का केंद्र मानने वाले विचारक इसलिए तर्क ज्ञान, अनुभविकता, प्रत्यक्षवाद और विज्ञान को आधुनिकता का आधार मानते हैं, जिससे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, प्रजातंत्र, सार्वभौमिकतावाद, धर्मनिरपेक्षता, पूंजीवाद, राष्ट्र राज्य, इतिहास, पत्रकारिता, संविधान तथा समाजशास्त्र आदि का विकास हुआ जो आधुनिकता से अनिवार्य रूप से संबद्ध है।